ನಲ್ಲಿನ ದಿನೇ ಜಯ ಜಯ ದೇವ ಹರೇ. ಮಧುಮೂರ ನರಕ ವಿನಾಶನ ಗರುಡಾಸನ ಏ ಸುರಕುಲಕ್ಕೆ ನಿಧಾನ ಜಯ ಜಯ ದೇವ ಹರೇ. ಯಾಕರ್ ಮಧು ಮಧು ಕೈ ಸಕ್ತವೇ ಮಧು ಮೂ ನರಕ ಇತ್ಯಾದಿ ರಾಕ್ಷಸ ವಿನಾಶ ಕ ಗರುಡಾಸನ. ಯ ಸಾಧಾರಣ ಕಹನೆ ಪರ ಯಾ ಪರ ಗರುಡಾಸನ ಲೇಂಗೇ ವೋ ಗರುಡಾಮ ಗರುಡೋ ಬನ್ನ ಔರ ಚಹ ಗೇ ಗರುಡಾಸನ ಮನೆ ಸಬ್ ಯ ಬ್ರಜ ಕಿ ಲೀಲಾ ಸಬ್ಕೊ ಲೇನ ಮಧು ಮೂರ ವೈಸೆ ಮಧು. ಯಾ ಪರ ಕಂಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತಿ जो भाव है उसको काटने वाले संसारिक आसक्ति इत्यादि या कोई और ले लिया जाएगा. मूल नरक तो है ही है. सुर कर के निदान जय जय देव हरि. अमल कमल दल लोचन भव मोचन अमल कमल दल लोचन अमल कमल मैंने सुंदर कमल जिसमें मल नहीं है दल लोचन ऐसे सुंदर उनके नेत्र हैं. भवमोचन भवमोचन मैंने क्या यहाँ पर भव मैंने एक होगा पुनः पुनः जन्म किंतु यहाँ पर जो ये कर रहे हैं गोपियों के संबंधित ये मत रखो. भव मैंने जब पुनः पुनः विरह इत्यादि होता है उसको मोचन करने वाले हैं गिरह को मोचन करने वाले. त्रिभुवन भवन निदान जरा दूर हो भैया इसमें बैठे कोई किसी को मत आने. त्रिभुवन भवन निदान त्रिभुवन भवन त्रिभुवन को कृष्ण प्रेम देने वाले ये इसका तात्पर्य. जनक सुता कृत भूषण बस ये करते 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 जब जनक सुता कृत दूषण भूषण गीत दूषण ये उनको स्मृति आ गई. ये कृष्ण लीला में तो करते ही हैं ये उस लीला में भी रामचंद्र जी की लीला में भी जनक सुता के द्वारा कृत भूषण वो भूषण किया. जसो सीता जी ही वनों में उनको जब गई थी दंडकारण्य इत्यादि उनका भूषण करती हैं. अथवा एक और अर्थ भी लिया जा सकता है जनक सुता कृत भूषण. ये जनक सुता की जितनी भी स्वर्ण की मूर्तियां थी वो सब तो गोपियां हुई थी तो ये गोपियां सब मिल करके कृष्ण लीला के लिए भूषण बने. तो सब भूषण रामचंद्र जी का वहां पर कृष्ण के लिए ही ये सब भूषण बनी. जीता दूषण ये जीता दूषण मैंने गोपियों के विरह के रूपी जो दूषण उनके लिए है इसको भी जीत करके फिर उनको दर्शन इत्यादि देते हैं. वो तो साधारण अर्थ ही है जीता दूषण किंतु अर्थ वैसा लगा लिया जाए. गोपियों के लिए जितने प्रकार की भी विघ्न बाधाएं इत्यादि हैं कृष्ण से मिलने के लिए वो जितने दूषण हैं बंधु बांधवों का उनके लिए गाली गलौज करना उनके लिए जितने बंधन हैं ये सब बंधनों को दूर करने वाले ये कैसे करते हैं योग माया के द्वारा. अभिनव जल सुंदर भीत मंदर अत्यंत सुंदर है वो जलधर के समान. भीत मंदर मंदर को भी भेद किया धारण किया यहाँ पर दिखलाया गया है. ए यहाँ पर जरा अभिनव सुंदर अभिनव जलधर सुंदर अभिनव जलधर के समान सुंदर है और मंदर को धारण किए हुए हैं. मंदिर के धारण का इधर देखो मंदिर का धारण करने का भी उद्देश्य श्रीमती जी के दर्शन ही है. इसीलिए कहते हैं श्री मुख चंद्र चको धारण किए हुए पर्वत, किंतु उनकी दृष्टि कहाँ है? राधा जी के ऊपर, श्री जी का, अतः तो राधा जी के मुख से वो चकोर है, इसीलिए वो पर्वत को धारण करेंगे। राधा जी निकट आए जाएगी, उनका हम दर्शन करेंगे। जय जय जीव है तव चरणी प्रणता वयम की भाव। इसलिए आप ऐसे ऐसी कीजिए, हम आपके चरणों में किस लिए प्रणत है? आप जो कृष्ण चंद्र और किशोरी जो राधिका जी, उनके चरणों में ही हम लोगों को प्रणत देती है। कुरुकुशलम प्रणतेषु, हम आपके प्रति प्रणत हैं। हमारा कुशल कीजिए। हमारा कुशल कैसे होगा? जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हो जाए, जन्मन से हम लोग ऊपर चले जाएं, मोक्ष मिल जाए या बैकुंठ मिल जाए, रुक्मिणी सत्यभामा की हम दासी बन जाए, या हम क्या चाहते हैं? ब्रज में कोई भाव चाहते हैं, शांत दास सप्त बासल्य तक भी नहीं, यहाँ तक कि चंद्रावली इत्यादि की भी हम दासी नहीं होना चाहते। मैं समझता था कि ब्रज में ऐसा कोई नहीं होगा जो चंद्रावली जी का पक्ष लेकर के और चंद्रावली जी की दासी होना चाहे, किंतु हमने वृंदावन में देखा, चंद्रावली कुंज भी एक देखा, और वहां पर वो लोग भजन करते हैं चंद्रावली का, चंद्रावली के अनुगत्य में वो लोग भजन करते हैं। इसलिए ऐसे लोग भी हैं जो चंद्रावली की दासी होना चाहिए, नहीं तो ये सब लीला गड़बड़ हो जाती
है।
इसलिए कहते हैं कुरुकुशल हम पढ़ से थी, हमारा कुशल कीजिए। तो कुशल कैसे करेंगे? श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्नेह हास मुरली मनोहर राधिका रसिक बांग कृपा निधे स्वप्रिया चरण किन के बीच, ये हमारा कुशल कीजिए। राधा जी की हम किंकरी की किंकरी बन जाए, ये इसी में हमारा कुशल है। इसके अतिरिक्त और अरे मेरा दास हो जाओ, हमारे साथ में पीड़ा करना प्रभु, इसकी हमको जरूरत नहीं। हम आपका दास नहीं होना चाहते, आपकी हम किंकरी होना चाहते हैं। श्री जय देव कबेरी दम कुरुते मूदम मंगल मुज्जवल दीसी, जय जय देव हरे, जय जय देव न मंगल मुज्जवल गीतम। उज्जवल मैंने उज्जवल रस ले लो, उज्जवल रस की जो गीति है उसमें हम लोगों का प्रवेश हो जाए, ये कृष्णचंद्र जी से ये प्रार्थना। आज के दिन हम लोग कृष्ण जी से यही प्रार्थना करेंगे, ये अपनी प्रिया जो है जिसकी आप भी सेवा करते हैं, कुछ चाहते नहीं हैं, उनकी चरण की सेवा करते हैं, उन्हीं की चरणों में सेवा के लिए हमें यही हम लोग प्रार्थना करें। भागवत आरंभ करें। प्रकट हुए थे यद्यपि बैकुंठ के ऊपर नित्य गोलोक वृंदावन में मथुरा और द्वारका में नित्य लीलाएं करते हैं, किंतु नित्य परिकरों के साथ में, किंतु स्वेच्छा से जगत में अपनी जोग माया के द्वारा जगत के लिए जो हितकारी लीलाएं हैं, जिसको जगत के लोग श्रद्धालु लोग ग्रहण कर सकते हैं, उन लीलाओं को उन्होंने प्रकट किया। सजोग माया बलम दर्शता ग्रहीतम, जोग माया के बल से जो लोग उनके इन लीलाओं को कुछ कुछ ग्रहण कर सकते हैं, बस उन लीलाओं को जगत ने प्रकट किया, जिससे उनका मंगल। जब कृष्णचंद्र आते हैं तो कुछ बहिर्मुख लोग भी प्रकट लीला में होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ उन्मुख होते हैं, उन्मुखों में भी कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो निष्ठा तक, कोई रुचि तक, कोई आसक्ति तक, कोई भावावस्था तक, कोई प्रेम प्राप्त करके भी, कोई वस्तु सिद्धि करके भी, और नित्य परिकर सब प्रकार के जितने भी जीव हैं योग माया उनकी भावना को देख करके, उनके साधन भजन को देख करके उन सबको इस प्रकट लीला में प्रकाश करते हैं। जो लोग इस भाव के योग्य हैं उनको योग माया कहां कहां किन किन लोकों से लेकर के कृष्ण के इस प्रकट लीला में सबको वो जन्म दे देती है, सबको सुयोग देती है। जो अत्यंत नास्तिक हैं जैसे कंस, जरासंध और जितने भी थे, ऐसे न जाने कितने लाखों होंगे, उनकी बहिर्मुखता दूर कर दी। जिन लोगों को विमुखता थी उनको उन्मुख बनाया, जिन लोगों को अनर्थ से भक्ति थी, अनर्थ ग्रस्त उनको अनर्थ दूर करके निष्ठा दी, जिनकी निष्ठा थी उनको रुचि, रुचि वाले को आसक्ति, आसक्ति वालों को भाव, और जिनको भाव था उनको वस्तु सिद्धि दिला दी, और जिनको वस्तु सिद्धि दी उनके जो कुछ कसाय थे उनको दूर करके नित्य लीला में, और जगत के जीवों के लिए ऐसी लीला की जिसका श्रवण कीर्तन करके जगत के भावी लोग एक कल्प तक उन्हीं लीलाओं का आश्रय करके कृष्ण की इन मधुर लीलाओं में प्रवेश कर, बल्कि कृष्ण लीला में और अवतारों में जो जो मुक्तियां दी और सब काम किया, वैकुंठ की गति भी दी, किंतु कृष्ण लीला में इससे पहले और कोई भी अवतार नहीं हुआ जिसमें उन्होंने लताओं तक को भी, वृक्षों को भी, पशुओं को भी, पक्षियों को भी प्रेम दिया जो ब्रह्मा इत्यादि उस प्रेम में नहीं प्रवेश कर सकते, ऐसा प्रेम दिया। इसके बाद वाले में चैतन्य महाप्रभु के रूप में और जो कुछ कमी थी उसको भी कमी करके पूरा करके उन्होंने दे दिया। रसराज महाभाव का भाव लेकर के जगत में उन्होंने जो कृष्ण लीला में भी जिनको नहीं दान किया उन सबको दान किया था। हम लोग दशम स्कंध से बड़ा प्रवचन के रूप में हम अभी कोई थोड़ा सा कहें, अब इसके बाद में शुभानंद ब्रह्मचारी जी हैं, मंगल महाराज हैं, और जो हिंदी जितने जानने वाले लोग हैं, बंगला भी जानने वाले हैं, हम लोग करीब करीब 5:30 बजे तक या 6 बजे तक ये लोग पाठ करें, दसम स्कंध का जितना चला जाए। जो बंगला वाले करेंगे वो बंगला में, हिंदी वाले करेंगे हिंदी में, किंतु बोलेंगे हिंदी में सभी लोग। इस तरह से 6 बजे तक ये लगातार कंटिन्यूएशन चला चलेगा, और इसके बाद में फिर 6 बजे हम लोग बैठेंगे, जैसे प्रतिदिन प्रवचन होता है वैसे उसके बाद का जो चरित्र है हम लोग प्रवचन में 1 घंटा हम बोलेंगे। इसके बाद में आरती होगी, और आरती के बाद में कीर्तन इत्यादि होकर के फिर हम लोग यहाँ पर प्रवचन में वहाँ पर बाहर में बैठेंगे, और उसमें कीर्तन भी होता रहेगा बीच बीच में, किंतु 10 से लेकर के 11 तक फिर उसमें प्रवचन साधु संतों का उसमें। इसके बाद में महाभिषेक 12 बजे रात में हम लोग कर करके चरणामृत लेकर के सबको बतला रहे हैं। 9वें स्कंध में सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया सूर्य वंश और चंद्रवंश का वर्णन। परीक्षित महाराज जी को 7 दिन का अभिषम पाठ था, सर्प काटेगा और वो मरेंगे, ये एक भूमिका तैयार की गई है, यथार्थ में ये कारण नहीं था, परीक्षित महाराज को सांप काटेगा ये संभावना नहीं थी। उनके सारे कर्म ही नष्ट हो गए हैं, भविष्य और वर्तमान के भगवान के वो पार्षद हैं, रसिक श्रेष्ठ हैं, जिनके लिए एक क्षण भर में ही भारतवर्ष या विश्व के जितने ऋषि महर्षि सब थे वो अन्यासी उनके पास में आ गए, जिनके देखने से भवमोचन अपने आप हो जाता, भवबंधन कट जाता है और वो किसी के ऋषि के गले में सांप देंगे या ऋषि उनको सांप देगा ऐसा संभव नहीं। ये तो भगवान की कुछ इच्छा, उन्होंने योग माया के प्रभाव से श्रीमद् भागवत जैसे क्या कौन सूर्य पुराण अर्क पुराण रूपी सूर्य को प्रकाश करते हैं, अपने को प्रकाश करने के लिए और अपनी लीलाएं जो कहीं भी आज तक प्रकाशित नहीं हुई उन सब लीलाओं को प्रकाश करने के लिए ये ऐसी एक योजना।